एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने अमेरिकी इतिहास की एक बहुत बड़ी मगर काफी हद तक छिपी हुई कहानी को दुनिया के सामने रखा है। किताब का नाम है इसाबेल विल्कर्सन की द वॉर्म्थ ऑफ अदर सन्स, द एपिक स्टोरी ऑफ अमेरिकाज ग्रेट माइग्रेशन।
नमस्ते। हाँ, ये किताब उस दौर के बारे में है जब 1915 से 1970 के बीच, मतलब काफ़ी लंबा अरसा है ये, अमेरिका के दक्षिणी राज्यों से करीब 60 लाख, मतलब 6 मिलियन अफ्रीकी अमेरिकी लोग उत्तर और पश्चिम के शहरों की तरफ गए।
60 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है।
हाँ, बहुत बड़ी। ये अमेरिका के अंदर ही हुआ अब तक का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, इंसानी पलायन है।
इसे ग्रेट माइग्रेशन या महान पलायन कहते हैं।
और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है ना?
हाँ,
बिल्कुल नहीं। इस कहानी को समझे बिना आज के अमेरिका के समाज को, वहाँ की संस्कृति, राजनीति, यहाँ तक कि शहरों का जो पूरा ढांचा है, उसे समझना बहुत मुश्किल है।
सही बात है। ये तो एक तरह से हिम्मत की कहानी है, बेहतर जिंदगी की तलाश की कहानी है, और जैसा किताब का टाइटल कहता है, दूसरे सूर्यों की हूंफ, मतलब थोड़ी गर्माहट, थोड़ी इंसानियत पाने की कहानी, वो भी अपने ही देश में।
बिल्कुल। और इसकी लेखिका इसाबेल विल्कर्सन, वो खुद भी कमाल की हैं। वो पुलित्जर पुरस्कार जीत चुकी हैं,
बिल्कुल,
पत्रकार हैं।
हाँ, और शायद पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला हैं जिन्हें पत्रकारिता में पुलित्जर मिला।
हाँ, बिल्कुल सही। और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के शिकागो ब्यूरो चीफ के तौर पर भी काम किया, तो उन्हें शहरी जिंदगी और वहां बसने वाले लोगों के संघर्षों की बहुत गहरी समझ है।
और इस किताब के लिए रिसर्च जबरदस्त, सुना है 15 साल लगे।
15 साल और 1200 से ज्यादा लोगों से उन्होंने बातचीत की। सोचिए, उन लोगों से मिलना, उनकी कहानियां सुनना, जिन्होंने ये सब खुद जिया था या देखा था।
और उनका अपना निजी कनेक्शन भी है शायद।
हाँ, उनके अपने माता पिता खुद इसी ग्रेट माइग्रेशन का हिस्सा थे। वो दक्षिण से निकलकर वॉशिंगटन डीसी आए थे, तो ये उनके लिए सिर्फ एक रिसर्च का टॉपिक नहीं है।
तो मतलब इसमें एक पत्रकार की नज़र भी है, इतिहास की समझ भी है, और एक पर्सनल टच भी है।
हाँ, और यही चीज़ इसे खास बनाती है। विल्कर्सन का ये भी मानना है, और ये उनकी बाद की किताब कास्ट में और खुलकर सामने आता है, कि ये सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये कहीं ज्यादा गहरा था।
हाँ, कास्ट की भी काफी चर्चा आई थी, उसमें उन्होंने अमेरिका के नस्लीय सिस्टम की तुलना भारत की जाति व्यवस्था से की थी, है ना?
बिल्कुल। और उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी किताब द वॉर्म्थ ऑफ अदर सन्स में दिखती हैं।
अच्छा, तो फिर इस किताब का सेंट्रल आइडिया क्या है? विल्कर्सन का मुख्य तर्क क्या है?
देखिए, वो कहती हैं कि ये जो ग्रेट माइग्रेशन था, ये अमेरिकी इतिहास को बदलने वाली एक बहुत ही अहम घटना थी। ये सिर्फ नौकरियों की तलाश में जाना नहीं था,
तो फिर क्या था?
ये उन लोगों का एक तरह का आंदोलन था, जो अपने ही देश में, आप कह सकते हैं, राजनीतिक और सामाजिक शरणार्थी बन गए थे। वो एक ऐसे सिस्टम से भाग रहे थे जो उन्हें बराबरी का इंसान मानने को ही तैयार नहीं था।
मतलब अपने ही देश में शरणार्थी, ये तो बड़ी बात है।
हाँ, विल्कर्सन इसे अमेरिका का जो सेवक वर्ग था, उसका पहला बड़ा कदम बताती हैं। एक ऐसा कदम जो उन्होंने बिना किसी से पूछे खुद उठाया।
और किताब कुछ सवाल भी उठाती है शायद, जैसे कि दक्षिण में हालात थे कैसे आखिर, ये जिम क्रो सिस्टम क्या बला थी।
हाँ, बिल्कुल। कि वो कौन सी सच्चाई थी जिसने लाखों लोगों को अपना घर, जमीन, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया? ये जिम क्रो असल में था क्या?
और फिर ये सफर, ये आसान तो नहीं रहा होगा, कितना खतरनाक था।
बहुत मुश्किल। और जब वो पहुंचे उन शहरों में जिन्हें वो शायद उम्मीदों का शहर समझ रहे थे, वादा किया गया देश,
हाँ, प्रॉमिस्ड लैंड,
तो वहां क्या मिला? क्या उम्मीदें पूरी हुई या कुछ और ही सच्चाई सामने आई? और इस पूरे आने जाने ने, इस पलायन ने पूरे अमेरिका को कैसे बदल दिया?
तो विल्कर्सन का जो सबसे बड़ा तर्क आपने बताया कि इन्हें सिर्फ माइग्रेंट नहीं बल्कि घरेलू शरणार्थी की तरह देखें।
हाँ, डोमेस्टिक रेफ्यूजीज। वो कहती हैं कि अगर हम उन्हें इस नज़र से देखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि उनका वो फैसला कितना बड़ा, कितना साहसी था।
और इस बड़ी कहानी को समझाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों की जिंदगी को फॉलो किया है ना?
हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है उनका। वो तीन मुख्य किरदारों के जरिए इस पूरे इतिहास को हमारे सामने रखती हैं। ईडा मे ग्लैडनी, जॉर्ज स्टार्लिंग और रॉबर्ट फॉस्टर। इनकी जिंदगी के साथ साथ हम उस पूरे युग को जीते हैं।
अच्छा, तो चलिए पहले थोड़ा दक्षिण के हालात समझते हैं। ये जिम क्रो क्या था?
देखिए, विल्कर्सन समझाती हैं कि यह सिर्फ अलग बैठने उठने या अलग पानी पीने का नियम नहीं था, ये एक पूरी व्यवस्था थी।
एक सिस्टम।
हाँ, कानूनों और डर के दम पर बना हुआ एक सिस्टम, एक तरह की जाति व्यवस्था ही कह लीजिए, जिसका मकसद था अश्वेत लोगों को सस्ता मजदूर बनाए रखना और समाज में उनकी जगह सबसे नीचे रखना, उन्हें अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा, वोट देने का अधिकार, इन सबसे दूर रखा जाता था।
और इसे लागू कैसे करते थे?
हिंसा और आतंक से। लिंचिंग का डर हमेशा बना रहता था, मतलब भीड़ का बिना किसी सुनवाई के किसी को मार डालना, सिर्फ शक के आधार पर भी।
बाप रे।
यहीं पर हम इडा मेग्लैडनी से मिलते हैं। वो मिसिसिपी में एक बटाईदार किसान की पत्नी थी।
बटाईदार मतलब शेयर क्रॉपर?
हाँ, शेयर क्रॉपर, जो जमींदार की जमीन पर खेती करते थे और फसल का बड़ा हिस्सा मालिक को देना पड़ता था, तो वो हमेशा कर्ज और गरीबी में फंसे रहते थे। इंडा में की जिंदगी बस कड़ी मेहनत, कर्ज और किसी भी पल कुछ भी हो जाने के डर में बीत रही थी। उनके कजिन को बहुत बुरी तरह पीटा गया था बिना किसी खास वजह के। तब उन्हें लगा कि इस माहौल में वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगी।
बिल्कुल,
वो बस थोड़ी सुरक्षा, थोड़ी शांति चाहती थी।
समझ आता है। और दूसरे किरदार जॉर्ज स्टार्लिंग?
जॉर्ज स्टार्लिंग वो फ्लोरिडा के थे।
हाँ।
पढ़े लिखे थे, होशियार थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन सिस्टम ऐसा था कि उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलता था।
क्या हुआ उनके साथ?
उन्होंने फल तोड़ने वाले साथी मजदूरों को इकट्ठा करके थोड़ी बेहतर मजदूरी की मांग करने की कोशिश की।
अच्छा।
बस इतनी सी बात पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। उन्हें रातों रात भागना पड़ा वहां से,
अच्छा,
मतलब आवाज उठाने की भी इजाजत नहीं थी।
बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी दिखाती है कि कोई भी अश्वेत व्यक्ति अगर जरा सा भी सिर उठाने की कोशिश करे तो उसकी जान पर बनाती थी।
और तीसरे थे डॉक्टर रॉबर्ट फॉस्टर। वो तो पढ़े लिखे थे, सर्जन थे। हाँ, लुजियाना के काबिल सर्जन। लेकिन पढ़े लिखे और हुनरमंद होने के बाद भी उन्हें अपने प्रोफेशन में कदम कदम पर जिल्लत झेलनी पड़ती थी,
क्यों?
क्योंकि गोरे डॉक्टर और मरीज उन्हें अपने बराबर का मानते ही नहीं थे। उनकी काबिलियत, उनकी इंसानियत की कोई कद्र नहीं थी। उनकी कहानी ये दिखाती है कि ये सिस्टम सिर्फ गरीब मजदूरों का ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे टैलेंटेड लोगों का भी दम घोट रहा था। एक तरह का ब्रेन ड्रेन था ये।
प्रतिभा का पलायन अपने ही देश के भीतर।
बिल्कुल।
तो ऐसे में इन तीनों के लिए और लाखों और लोगों के लिए एक पॉइंट आया होगा जब लगा होगा कि बस अब बहुत हो गया।
हाँ, वो आखिरी दिन का, द लास्ट स्ट्रॉ, जिसने उन्हें वो मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर किया। इडामे के लिए वो उनके कजिन की पिटाई थी, जॉर्ज के लिए जान का खतरा, रॉबर्ट के लिए वो रोज रोज का पेशेवर अपमान।
और ये उनका अपना फैसला था, एक तरह से आजादी का ऐलान।
हाँ, अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेने की कोशिश। और ये जाना भी आसान नहीं था, छिप छिपाकर प्लान बनाने पड़ते थे।
क्यों, जाने में क्या दिक्कत थी?
क्योंकि दक्षिण की पूरी अर्थव्यवस्था ही उनके सस्ते लेबल पर टिकी थी। उनका जाना मतलब सिस्टम के लिए एक तरह का धोखा था, नुकसान था, तो पकड़े जाने का डर रहता था। पीछे क्या छूट रहा है उसकी चिंता थी, आगे क्या होगा पता नहीं था, बस एक धुंधली सी उम्मीद थी बेहतर जिंदगी की।
तो फिर वो पहुंचे उत्तर या पश्चिम, शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वहां क्या हुआ? शुरू में कैसा लगा?
शुरू में तो एक अजीब सी आजादी महसूस हुई होगी, जैसे ट्रेन में कहीं भी बैठ जाना, किसी भी दुकान में चले जाना। ये छोटी बातें थीं, पर उनके लिए बहुत नई और बड़ी थीं।
हाँ, जो चीजें हम आज ग्रांटेड लेते हैं।
बिल्कुल। किताब का एक हिस्सा है द काइंडली स्ट्रेंजर, यानी दयालु अजनबी। ये नाम थोड़ा आयरोनिक है।
क्यों?
क्योंकि उत्तर दूर से जितना अच्छा और स्वागत करने वाला लगता था, पास आने पर वहां की मुश्किलें अलग तरह की थीं, ज्यादा छुपी हुई, ज्यादा जटिल।
मतलब खुलेआम जिम क्रो कानून नहीं थे, पर भेदभाव फिर भी था।
हाँ, उसे कहते हैं डी फैक्टो सेग्रीगेशन, मतलब कानून में नहीं पर व्यवहार में अलगाव। सबसे बड़ी मुश्किल थी रहने की जगह ढूंढना।
अच्छा, वो कैसे?
बहुत से इलाकों में रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स होते थे, मतलब मकान मालिक आपस में तय कर लेते थे कि वो अश्वेत लोगों को घर बेचेंगे या किराए पर नहीं देंगे।
अरे।
और बैंक रेड लाइनिंग करते थे, नक्शे पर अश्वेत बस्तियों के चारों ओर लाल लाइन खींचते थे और वहां घर खरीदने या बनाने के लिए लोन ही नहीं देते थे।
तो इसका मतलब वो कुछ खास इलाकों में ही रहने को मजबूर हो गए।
हाँ, जो अक्सर ज्यादा भीड़भाड़ वाले होते थे, जहां सुविधाएं कम होती थीं।
और नौकरियों का क्या, वहां भी भेदभाव था?
हाँ, बिल्कुल। जो अच्छी तनख्वाह वाली फैक्ट्री की नौकरियां थीं वो अक्सर गोरों के लिए रखी जाती थीं, और जो मजदूर यूनियनें थीं वो भी अश्वेत कामगारों को आसानी से मेंबर नहीं बनाती थीं।
तो इन तीनों का क्या हुआ? इडा, मैं, जॉर्ज रॉबर्ट।
इडा, मैं शिकागो पहुंची, वहां उन्हें एक कम्युनिटी तो मिली, लेकिन भीड़ भाड़, गरीबी और शिकागो की कड़कड़ाती ठंड, इन सब का सामना करना पड़ा। जॉर्ज न्यूयॉर्क के हार्लेम पहुंचे। वो रेल रोड पोर्टर बन गए, ट्रेनों में सामान उठाते थे, यात्रियों की मदद करते थे। ये उस जमाने में अश्वेत लोगों के लिए एक इज्जतदार काम माना जाता था, पर इसमें लगातार घर से दूर रहना पड़ता था।
और डॉक्टर फोस्टर?
डॉक्टर फोस्टर ने तो गाड़ी चलाकर कैलिफोर्निया तक का सफर तय किया। रास्ते में कई जगह उन्हें नस्लवाद झेलना पड़ा, कहीं रात गुजारने के लिए होटल तक नहीं मिला।
ओहो।
लॉस एंजल्स पहुंचकर भी उन्हें अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जमाने में सालों लग गए, क्योंकि गोरे डॉक्टर उन्हें अपने अस्पतालों में आसानी से काम नहीं करने देते थे। तो हाँ, वादा किया गया देश मिला तो सही, पर उसकी अपनी मुश्किलें थीं, अपनी चुनौतियां थीं।
तो इसके बाद किताब दिखाती है कि कैसे इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी बनाई, दशकों लगे सब में।
हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि उन शहरों को और पूरे अमेरिका को बदल दिया। इसमें कामयाबियां भी थीं और गहरी निराशाएं भी थीं।
जैसे
एडा में शिकागो में अपने परिवार की, कह सकते हैं, रीढ़ मनी, और उन्हें जिंदगी में पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दक्षिण में तो ये हक छीना हुआ था।
हाँ, ये तो बड़ी उपलब्धि है।
जॉर्ज ने बहुत मेहनत की, अपने परिवार को पाला।
और डॉक्टर फॉस्टर, वो तो सर्जन थे।
डॉक्टर फॉस्टर ने लॉस एंजलिस में बहुत कामयाबी हासिल की, पैसा कमाया। वो मशहूर म्यूजिशियन रे चार्ल्स जैसे बड़े लोगों के पर्सनल डॉक्टर भी बने।
वाह।
लेकिन विल्करसन ये भी दिखाती हैं कि पैसा और कामयाबी भी नस्लवाद के दिए जख्मों को पूरी तरह भर नहीं पाए। उन्हें वो अपनेपन का एहसास जिसकी तलाश में वो निकले थे, वो शायद कभी पूरी तरह नहीं मिला।
ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और इन लाखों लोगों के आने से अमेरिका पर क्या असर पड़ा बड़े पैमाने पर?
असर तो बहुत गहरा पड़ा। शहर बदल गए। शिकागो, डिट्रॉयट, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, इन शहरों की डेमोग्राफी ही बदल गए।
हाँ, आबादी का मिजाज बदला होगा।
बिल्कुल। उत्तर में एक ताकतवर अश्वेत वोटर वर्ग तैयार हुआ, जिसने आगे चलकर राजनीति को प्रभावित किया, और संस्कृति, ओह, संस्कृति पर तो जबरदस्त असर पड़ा।
जैसे कि संगीत?
हाँ, अमेरिकी संगीत की जान कहे जाने वाले ब्लूज और जैज, ये संगीत दक्षिण से उत्तर लाने वाले यही लोग थे, और इसी ने आगे चलकर रॉक एंड रोल, सोल, मोटाउन, आज के न जाने कितने म्यूजिक फॉर्म्स की नींव रखी।
सही बात है।
साहित्य, कला, खेल, हर चीज पर इस माइग्रेशन का असर दिखता है, और इसने आगे चलकर नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए भी एक तरह से जमीन तैयार की।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था, जैसा आपने कहा, निराशा वाला।
हाँ, वो ये कि नस्लवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बच्चों को अलग स्कूलों में जाना पड़ता था जहाँ सुविधाएं कम थीं। जिन इलाकों में ये लोग रहने को मजबूर हुए वो अक्सर गरीबी और दूसरी शहरी समस्याओं का केंद्र बन गए। तो ये एक मिलीजुली तस्वीर थी, तरक्की भी थी और एक अधूरापन भी था।
किताब के आखिर में विल्करसन इन तीनों किरदारों की कहानी को उनके बुढ़ापे तक ले जाती हैं, है ना?
हाँ, वो उनकी पूरी जिंदगी, उनकी विरासत पर नजर डालती हैं। ये हिस्सा हमें उस पूरी पीढ़ी के जबरदस्त साहस, उनकी उपलब्धियों की क्या कीमत चुकानी पड़ी, और उनकी यात्रा की जो कभी ना मिटने वाली छाप है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। विल्करसन वाकई इस ग्रेट माइग्रेशन को अमेरिकी इतिहास की एक बुनियादी, एक महाकाव्यात्मक घटना के तौर पर स्थापित करती हैं।
तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालें, कुछ बड़े सबक या थीम्स, तो वो क्या होंगे?
सबसे पहला तो शायद यही कि ये पलायन सिर्फ मजबूरी में हुआ एक बहाव नहीं था, ये उन लोगों की हिम्मत, उनकी एजेंसी का प्रतीक था।
एजेंसी मतलब?
मतलब अपनी जिंदगी को बदलने की इच्छा और क्षमता। ये 60 लाख लोगों का बिना किसी नेता के अपने पैरों से किया गया एक तरह का विद्रोह था। उन्होंने चुपचाप उस दमनकारी सिस्टम को नकार दिया।
ये एक अहम नजरिया। दूसरा,
जिम क्रो साउथ को सिर्फ नस्लीय भेदभाव नहीं, बल्कि एक कठोर जाति व्यवस्था के रूप में देखना। विल्करसन कहती हैं कि ये अमेरिका का अपना कास्ट सिस्टम था।
जी।
आपकी चमड़ी का रंग आपकी पूरी जिंदगी तय करता था।
तो इसीलिए लोग सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि इज्जत और सुरक्षा ढूंढ रहे थे।
हाँ, बिल्कुल, इंसानी गरिमा की तलाश थी ये, और ये बात शायद हमें अपने समाज में भी जो ऊंच नीच है उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
सही कहा। तीसरा सबक।
तीसरा है वादा किए गए देश का भ्रम, कि उत्तर या पश्चिम कोई स्वर्ग नहीं थे, वहां भेदभाव था, भले उसका तरीका अलग था, छुपा हुआ था, घर मिलने में मुश्किल, नौकरियों में रुकावटें, ये सब था। ये दिखाता है कि नस्लवाद कितना गहरा और कितने अलग अलग रूपों में हो सकता है।
और चौथा?
चौथा है इस पूरी उथल पुथल की भारी इंसानी कीमत। सोचिए, अपनी जड़ें, अपना घर, जमीन, संस्कृति, रिश्ते सब पीछे छोड़ना पड़ा, नई जगह पर अकेलापन, पहचान का संकट, ये सब झेलना पड़ा। यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं घर और अपनेपन की गहरी तलाश होती है।
ये तो बहुत जरूरी बात है। और पांचवा?
और पांचवा ये कि इस पलायन ने अमेरिका का नक्शा ही बदल दिया। शहर बदले, राजनीति बदली, संस्कृति बदली। ब्लूज, जैज से लेकर आज के हिप हॉप तक अमरीकी संस्कृति का कितना कुछ इन्हीं प्रवासियों की देन है। ये दिखाता है कि कैसे हाशिए पर रखे गए लोग भी बदलाव के कितने बड़े वाहक बन सकते हैं।
किताब में कुछ कोट्स या विचार भी होंगे जो याद रह जाते हैं?
हाँ, कई है। जैसे एक जगह विल्कर्सन कहती हैं कि ये लोग अपने ही देश की सीमाओं के भीतर राजनीतिक शरण मांग रहे थे।
अपने ही देश में राजनीतिक शरणार्थी, ये सोचने वाली बात है,
है ना? ये दिखाता है कि उनके लिए दक्षिण कितना पराया और दमनकारी हो चुका था।
और
एक और जबरदस्त लाइन है, ये 6 मिलियन आत्माओं की एक नेतृत्वहीन क्रांति थी जो लाखों निजी फैसलों से बनी एक नदी थी।
वाह, मतलब बिना किसी लीडर के आम लोगों के फैसलों ने इतिहास बदल दिया।
हाँ, हर एक का फैसला एक बूंद जैसा, पर सब मिलकर एक बड़ी नदी बन गए।
और किताब के टाइटल से जुड़ा हुआ वो विचार, दूसरे सूरज की गर्माहट वाला।
हाँ, कि इस दूसरे सूरज की गर्माहट की तलाश ने उन लोगों को अपनी तरफ खींचा जिनमें सबसे ज्यादा हिम्मत और बेचैनी थी। ये उनकी उम्मीद, उनकी गरिमा, उनकी आजादी की चाहत को दिखाता है।
और एक और था शायद गुलामी से जुड़ा हुआ।
हाँ, कि वे अपने लोगों की आभासी गुलामी को चुनौती दे रहे थे और ऐसा करके वे स्वतंत्र होने के अपने अधिकार का दावा कर रहे थे। मतलब ये सिर्फ भागना नहीं था, ये आजादी के लंबे संघर्ष की एक कड़ी थी।
तो ये सब बातें जानने के बाद आज के समय में इसका क्या रेलेवेंस है? हम इसे अपनी जिंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं?
देखिए, पहली बात तो ये कि आज के अमेरिकी शहरों को समझने के लिए ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आज भी जो वहां नस्ली आधार पर बस्तियां बटी हुई हैं, अमीर गरीब का जो फासला है, जो शहरी समस्याएं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इस इतिहास में हैं।
सही।
और
दूसरी बात,
ये हमें आज के दौर के जो माइग्रेंट्स हैं, जो शरणार्थी हैं, उन्हें समझने में मदद करता है। लोग क्यों अपना घर छोड़ते हैं, क्या मजबूरियां होती हैं, क्या उम्मीदें होती हैं, नई जगह जाकर क्या मुश्किलें झेलते हैं, ये कहानी हमें उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाती है।
ये तो है।
तीसरी बात, हम अमेरिकी संस्कृति की उन चीजों की शायद ज्यादा कद्र कर पाए जिनकी जड़ें इस पलायन में हैं। संगीत, खाना, बोलने का तरीका। अक्सर हम भूल जाते हैं कि जिसे हम मेनस्ट्रीम कल्चर कहते हैं उसे बनाने में ऐसे समुदायों का कितना बड़ा हाथ रहा है।
बिल्कुल। और चौथी बात?
चौथी, ये हमें आम इंसान की ताकत का एहसास कराता है कि कैसे लाखों लोगों के छोटे छोटे निजी फैसले मिलकर देश का भविष्य बदल सकते हैं। ये हमें अपनी जिंदगी में भी सही कदम उठाने की प्रेरणा देता है।
और पांचवी बात शायद अमेरिकन ड्रीम से जुड़ी है।
हाँ, ये हमें उस अमेरिकन ड्रीम पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। क्या ये सपना सबके लिए एक जैसा है? क्या सिर्फ पैसा कमा लेना ही कामयाबी है? डॉक्टर फॉस्टर की कहानी।
हाँ, वो याद है, कामयाब होकर भी वो अपनेपन की तलाश में थे।
बिल्कुल। तो सफलता और आजादी के असली मायने क्या है, ये सवाल ये किताब हमारे मन में छोड़ जाती है।
सही कहा। आपके लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या रही या सबसे चौंकाने वाली बात?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यही जानना था कि अमेरिकी इतिहास का इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली चैप्टर इतने लंबे समय तक कैसे, मतलब, अनदेखा सा रहा या उसे उतनी अहमियत नहीं दी गई। ये कहानी कितनी जरूरी है, ये जानना मेरे लिए अहम था।
हाँ, मेरे लिए भी ये बात चौंकाने वाली थी। और मुझे सबसे ज्यादा छुआ इन तीन लोगों की कहानियों ने, ईडा, मे, जॉर्ज रॉबर्ट। उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, उनके दर्द, उनकी उम्मीदें, ऐसा लगा जैसे हम उनके साथ ही वो सफर कर रहे हैं। और विल्कर्सन का वो नजरिया कि दक्षिण एक जाति व्यवस्था थी, ये भी बहुत सोचने पे मजबूर करता है।
हाँ बिल्कुल, और अंत में ये किताब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना?
हाँ, क्या सवाल?
कि हमारे अपने समाजों में, हमारे आसपास ऐसी कौन सी अनकही कहानियां हैं, कौन से छिपे हुए पलायन हैं, चाहे वो जगह बदलने वाले पलायन हो, या सामाजिक बंधनों से निकलने वाले, या सोच बदलने वाले, जो आज भी हमारी जिंदगी और हमारे भविष्य को चुपचाप एक तरह से आकार दे रहे हैं।
ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।